नमस्कार सुताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। कोरोना काल में कई मजदूर हो और कई लोगों की रोजगार चला गया है, साथ ही बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुएं निरंतर बढ़ती जा रही है, और इसके कारण आम नागरिकों को अपनी आजीविका चलाने में बड़ी समस्या आ रही है। आज हमारे साथ में गांधीवादी एवं लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार
सर। जिस तरीके से, बेतहाशा तरीके से जो महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, रोजमर्रा की वस्तुओं के जो मूल्य है निरंतर बढ़ता जा रहा है, और कोरोना काल में जो बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है, साथ ही कमर तोड़ महंगाई से जिस तरीके से रोजमर्रा की वस्तुएं निरंतर बढ़ती जा रही है, सर इस पर क्या विचार है आपके?
देखिए योगेश भाई, पहली बात कि कोरोना लगभग लगभग 2 साल से पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। WHO खुद कह रहा है कि लगभग 120 देशों में तीसरी लहर की छवि को देखी जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जब से कोरोना चालू हुआ, COVID-19 2019 से आज तक अगर देखा जाए तो बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। केवल संगठित क्षेत्र में ही बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, बल्कि आकर के देखा जाए तो अब तो मजदूरी के क्षेत्र में भी और संगठित क्षेत्र में भी बेरोजगारी बढ़ने लगी है। काम धंधे धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होती जा रही है, छोटे छोटे कंपनियां बंद होती जा रही है, और लोगों के पास काम करने के लिए काम नहीं बचे हुए। जो पहले हैंड टू माउथ थे, कमाते थे और खाते थे, उनकी भी स्थिति आज खराब हो चुकी है कि आज वो कमाने लायक ही नहीं बची है, क्योंकि पूरा देश लगभग लगभग बंद के कगार पर है और 2 साल से बंदी को झेल रहे, तो कुछ काम धाम बचे नहीं है, कुछ रोजगार नहीं बचा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि इसी दौर में महंगाई अपनी एकदम चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। एक साधारण उदाहरण ले लिया जाए खाने का तेल का, तो जो खाने का तेल इसी जनवरी के महीने में लगभग लगभग 95 रुपया प्रति लीटर हुआ करता था, आज वह खाने का तेल 160 रुपया से 165 रुपये लीटर तक बिक रहा है। ये खाने के तेल की बात है। पेट्रोल के दाम जब मोदी जी सरकार बनाए और जब सरकार में आए तो उन्होंने एक नई पॉलिसी लेकर के आए कि डेली डेली दाम बढ़ाया जाएगा, वो मार्केट के हिसाब से होगा, जिसमें प्रतिदिन कीमत बढ़ेगी और वो कम भी हो सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस दिन से यह नियम लागू हुआ उस दिन से किसी दिन कम नहीं हुआ है, उस दिन से डेली डेली पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, डीजल के दाम बढ़ते गए। आज के डेट में मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल 112.99 रुपये प्रति लीटर बिक रहे और डीजल 100 रुपया लीटर हो गया है। तो बताइए, जब इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ बेरोजगारी है, काम धंधे नहीं है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई कम करने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो इस दौर में सरकार को अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। सरकार को आगे आकर के कहना चाहिए कि हम महंगाई को किस प्रकार से कंट्रोल करें, लेकिन सरकार के मंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे दिन के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए महंगाई बढ़ रही है, यह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की देन है कि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की देन है, लेकिन आप किस लिए बैठे? आपकी भी तो कोई दिशा होती है, आपके लिए भी तो कोई गाइडलाइन है, आपका भी तो कुछ अधिकार है, लेकिन उस पे ना हमारे मंत्री महोदय बोलने का काम कर रहे हैं लोग, ना हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे, ना हमारे महामहिम कुछ संज्ञान में ले रहे, और ना ही प्रधानमंत्री जी आगे आकर के बोल रहे। प्रधानमंत्री जी इस कोरोना काल में भी और महंगाई के दौर में भी सामने तो आए बोलने के लिए, लेकिन अपने मन की बात को बोलते गए, कुछ लोगों से बात करते गए, कोरोना पे बात करते गए, लेकिन महंगाई पे आज देख लीजिए कि चारों तरफ से मौन धारण कर लिया गया है। और पार्लियामेंट के अंदर भी जो बहस चल रही है महंगाई पे बहस नहीं चल, जो आजकल के पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक दल भी है वो केवल कोरम पूरा करने के लिए सरकार का विरोध कर दे रहे, लेकिन एक तार्किक बात नहीं कर रहे कि महंगाई को कैसे कम किया जाए। जब तक तार्किक तरीके से बात नहीं किया जाएगा, सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, महंगाई को कम नहीं किया जा सकता। इसका एक रास्ता था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहे थे कि दाम बाधो नीति को अपनाओ और बाजार पे नियंत्रण करो। उस समय डॉक्टर लोहिया ने कहे थे कि दाम बाधो नीति को अपनाओ और बाजार पे नियंत्रण करो। तो आप देखें योगेश भाई कि एक तरफ हर चीज पर नियंत्रण तो कर दिया जा रहा है, लेकिन बाजार पे सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है, बाजार को खुला छूट दिए, और बाजार को खुला छूट देने का ही नतीजा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम डेली डेली बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ पैसे बढ़ रहे, और बढ़ते बढ़ते आज 110 रुपया 111 रुपया प्रति लीटर हो गए। तो सरकार को चाहिए कि पहले बाजार पर नियंत्रण करे, और जो नाना प्रकार के टैक्स सरकार लगाई है, अभी तक तो जीएसटी समझ में नहीं आया कि जीएसटी है क्या, जीएसटी कैसे लगाया जा रहा है। तो सरकार पहले कहती थी कि एक प्रकार का टैक्स होगा, लेकिन आज देख लीजिए कि एक लीटर पेट्रोल पे कितने टैक्स लग रहे, एक लीटर डीजल पे कितने टैक्स लग रहे। तो ये सरकार इसको कम करने के मूड में नहीं, अगर सरकार इसको कम नहीं कर रही है, बाजार पर नियंत्रित नहीं कर रही है, तो आने वाला जो दिन होगा वो बहुत ही विकट समस्या लेकर के आएगा, एक नए महामारी को जन्म देगा और उस महामारी में लोग अकाल मृत्यु के तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सरकार को जगाने के लिए लोग स्वतः आगे आए और सरकार को बताए कि आपके काल में महंगाई बढ़ रही है, आप महंगाई को रोकने के लिए कुछ उपाय कीजिए।
जी सर, सर जिस तरीके से कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं और निरंतर महंगाई अपने चरम पर है, और साथ ही जो किचन में जो व्यवस्थाएं की जाती है रोजमर्रा की वस्तुएं, उस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है इस महंगाई को लेकर?
देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को भोजन के लिए हर चीज की प्रोटीन की जरूरत है, कैलोरीज की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, एक स्वस्थ भोजन की जरूरत है, सीधी सीधी बात में कहा जाए। लेकिन आज अगर आप किचन का आकलन लगा लीजिए, तो मैं पहले ही बोला कि खाने वाले तेल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो तेल 90 रुपया 95 रुपया लीटर बिकता था, आज वह तेल 160 रुपया 165 रुपया लीटर बिक रहा है। योगेश भाई, आपको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए कि कितना प्रभाव पड़ा होगा, कितना प्रभाव पड़ा होगा और किस प्रकार का प्रभाव पड़ा होगा, ये भी देखना होगा कि किस प्रकार का प्रभाव पड़ा होगा। भाई, व्यक्ति अपनी आवश्यकता कैसे कम करे, पहले भी उनको अगर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर तेल किसी को लगता था, तो उतना तेल तो उसको आज भी लग रहा है, वो किसमें कटौती करे। लेकिन सरकार इस पर ध्यान न दे करके सरकार उनके वेतन पे कटौती पे ध्यान दे दीजिए। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रखी है। जो मजदूरी पहले 300-400 रुपया दिहाड़ी में मिलता था, आज उसमें भी कटौती हो गई। एक तो आधा रोजगार हो गया है और दूसरी तरफ आधा जो है पेमेंट हो गई है। तो इसमें किचन पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है कि जब पेमेंट ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, साधन ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, तो किचन पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। और किचन पे प्रभाव ये पड़ रहा है कि एक स्वस्थ रहने के लिए जो व्यक्ति को जो जिस भोजन की जरूरत होगी, वह भोजन नहीं मिल पाएगा। तो इसका मार, महंगाई की मार किचन पे तो अवश्य ही पड़ रही है कि जो एक स्वस्थ भोजन की जरूरत लोगों को होती है, वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी मार हमारे घर की माताएं बहनें भी झेल रही, हमारे घर के बच्चे भी झेल रहे, पूरे हिंदुस्तान के लोग झेल रहे इस बात को, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। और दूसरी तरफ सरकार रोजगार बढ़ाने के दिशा में भी काम नहीं कर रही। सरकार को चाहिए कि रोजगार बढ़ाने के दिशा में काम करे। महंगाई बढ़ती है, ठीक है, लेकिन महंगाई के तुलना में रोजगार बढ़े, हर हाथ को काम मिले, और हर हाथ को काम मिले तो उसमें ईमानदारी से उसकी मजदूरी मिले, ईमानदारी से उसका जो वेतन है वो दिया जाए, तो महंगाई कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन एक तरफ आप महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ काम को कम करते जा रहे हैं, यह तो सरासर बेईमानी है और यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, एक पूर्ण बहुमत सरकार के लिए उचित नहीं है। ताकि जो पूर्ण बहुमत में सरकार होती है, उसको पावर रहता है, उसको शक्ति होती है कि महंगाई पे कैसे कंट्रोल किया जाए। और सरकार यह जानती है कि महंगाई पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अगर बिचौलियों को सरकार कंट्रोल करती, कालाबाजारी को सरकार कंट्रोल करती, उत्पादन सेक्टर पर ध्यान देती, अपने किसानों को मजबूत करती, छोटे छोटे उद्योगों को मजबूत करती, घरेलू और कुटीर उद्योगों को मजबूत करती, तो शायद यह महंगाई भी कम होती और दूसरी तरफ हर हाथ को काम मिलता तो इनकम भी बढ़ता। तीसरी बात कि सरकार को चाहिए कि बाजार पर नियंत्रण करे, जो बाजार को खुली छूट दे रखी है सरकार, उस पर नियंत्रण करे, तब जाकर के ही महंगाई पर नियंत्रित किया जा सकता है और महंगाई पर चर्चा भी करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि देश के बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके चर्चा करे कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। सरकार करती क्या है कि जो बड़े बड़े कंपनियों के पक्षधर होते हैं, जो कारपोरेट के पक्षधर होते हैं, जो उत्पादन सेक्टर के पक्षधर होते हैं बड़े बड़े, उन लोगों के साथ बैठ जाती है, 5-7 इकोनॉमिक्स को बैठा लेती है, उनसे बात कर लेती है, और वो अंदर कौन से निर्णय लेते, कौन से फार्मूला तय कर देते हैं, कौन से पैमाना तय करते हैं, लोगों को नहीं पता चलता है। और पता चलता है कि उनके बैठने से कोई फायदा नहीं, महंगाई और बढ़ती जा रही है। तो सरकार को तो चाहिए कि हर सेक्टर के लोगों को बुला करके उनसे चर्चा करे कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इसमें आपकी क्या राय है। तो लोग जाते अपनी राय बताते, और वह लोग जो एकदम आम जनता से जुड़े हुए लोग, जो आम जनता की परेशानियों को समझ रहे हैं, तो सरकार के लोग जो है एसी में बैठने वाले लोगों से बैठ करके चर्चा कर लेते हैं, वातानुकूलित कमरे में बैठ करके चर्चा कर लेते हैं, उन लोगों से चर्चा करते हैं जिन लोगों को महंगाई के बारे में कुछ समझ में नहीं है, जिनको महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है, अनाप शनाप संपत्ति वालों के साथ सरकार बैठ करके चर्चा करती है और उसकी मार गरीबों पे पड़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि पब्लिक सेक्टर के लोगों से बात करे ताकि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो रास्ता है उसको सार्वजनिक करे और उस पर एक संग्रह कराए और उसके माध्यम से चले, तो महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी, महंगाई नियंत्रित होगी।
सर, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें से क्या जनता को किस तरीके से राहत दी जा सकती है? साथ ही क्या अब पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर को क्या जीएसटी में सम्मिलित करना चाहिए? सर, किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस की जो सरकार दलील दे रही है, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है, आपकी बात सही है, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूरे विश्व के अंदर तेल की कीमत ऐसी है? अभी पड़ोसी देश श्रीलंका को उठा करके देख लीजिए, वहां पे पेट्रोल अपने से कम बिक रहा है, अपने से छोटा देश है, वहां खपत कम है। ठीक है, खपत कम हो सकता है, लेकिन भाई अगर हमारे यहाँ खपत कम है तो हम पैसे भी तो आपको ज्यादा दे रहे हैं, हम बड़ी संख्या में भी तो ले रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। उसका कारण है कि सरकार यह आम जनता की सरकार नहीं होगी, यह सरकार जो है कारपोरेटों की सरकार है। और आज जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, यह भी कारपोरेट के लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तार्किक पूर्ण तरीके से मैं पूरी साहस के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इनके चुनाव को देखिए, थोड़ा सा अपन दूर चल करके देखते हैं योगेश भाई, इनके चुनाव को देखिए। एक संसद जब चुनाव लड़ता है, संसदीय क्षेत्र में जब चुनाव लड़ने जाता है, तो लगभग लगभग करोड़ों रुपया खर्चा करता है। आज विधानसभा की भी वही स्थिति होगी, तो भैया ये पैसे आते कहाँ से? ये जो खर्चा करते हैं करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, ये आते कहाँ से? तो इनको बड़े बड़े लोग चंदा देते हैं, यही कारपोरेट घराना इनको चंदा देता है। और जब कारपोरेट घराना इनको चंदा देता है, तो आज राजनीति गिव एंड टेक का मामला है, लगाओ और कमाओ का मामला हो गया। वो लोग पैसे लगाते हैं और उनके पैसे लगाने पे लोग चुनाव जीतते हैं, तो वो लोग जो नियम बनाते हैं कारपोरेट घराना के लोग, उससे हमारी सरकार, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे संसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री मोहर लगाते हैं। इनको जनता के सवालों से कोई मतलब नहीं रह गया। आज की जो पार्लियामेंट है, आज की जो संसद है, गूंगे और बहरों की हो गई है, आंख बंद करके चल रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसको आम जनता की तरफ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आम जनता को सिर्फ और सिर्फ ये मतदाता समझते हैं, जबकि पैसे ये कारपोरेट घराना से लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, यह सरकार पूरी तरीके से कारपोरेटों की सरकार है, पूरी तरीके से धनपतियों की सरकार है, पूरी तरीके से बड़े बड़े पैसे वालों की सरकार है, और उन्हीं के कहने पे पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी वही बना रहे। यहाँ तक कहा जाए कि पॉलिसी आज कारपोरेट बना रही है और साइन करने का काम हमारे विधायक मंत्री और हमारी जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है, वो करने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से बाजार को खुली छूट दे रखी है। जब तक बाजार पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस समय कहे थे कि आय की सीमा तय करो, खर्च की सीमा तय करो, दामबाद और नीति अपनाओ और बाजार पर नियंत्रण करो। जब तक इन चारों पांचों बातों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार इससे परहेज कर रही है, कारण कि राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे, वो आम जनता की बात करते थे, लेकिन आज की जो सरकार है, जहाँ आम जनता की न बात करके कारपोरेट की बात कर रही है, तो कारपोरेटों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ते हैं, इसलिए कारपोरेटों के लिए नियम बना रहे और बाजार को खुली छूट दिए। इसलिए अनिवार्य है कि बाजार पर नियंत्रण किया जाए, और सरकार जब तक बाजार पर नियंत्रण नहीं करती है, तब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं हो सकता है।
जी, बढ़ती महंगाई पर सरकार सर किस तरीके से नियंत्रण करे और लोगों को क्या सुविधाएं उपलब्ध करे और ऐसी कोई नई व्यवस्थाएं लागू करे ताकि महंगाई को नियंत्रण में किया जा सके?
देखिए, जो डीजल और पेट्रोल की बात है खास करके, तो मैं लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि लोग भी अपने उपभोग को सीमित करें। आज जहाँ काम हमारा मोटरसाइकिल से चल जाता है, टू व्हीलर से चल जाता है, हम वहाँ भी कार का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ हम पैदल जा सकते हैं, हम वहाँ भी कार से जा रहे हैं, वहाँ भी हम बाइक से जा रहे हैं। तो स्वतः जनता को भी संज्ञान में लेना चाहिए, स्वतः जनता को भी अपने दायित्व को निभाना चाहिए, हम सभी को भी अपने दायित्व को निभाना चाहिए कि जितना हो सके हम अपने उपभोग को कम करें, क्योंकि हम अपने उपभोग को कम करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन हमारे बचेंगे, प्राकृतिक संसाधन बचेंगे तो लूट नहीं होगी, और लूट नहीं होगी तो बाजार नियंत्रण में रहेगी, महंगाई कम होगी और हमारे प्राकृतिक संसाधन बचे रहेंगे। लेकिन आज समाज भी उस दायित्व को नहीं निभा रही है, और समाज उस दायित्व को नहीं निभा रही है इसलिए कि एक बाजारीकरण का युग चल रहा है। इसमें लोगों की आवश्यकताओं को उभारने का प्रयत्न किया जा रहा है, और लोगों की आवश्यकताओं को उभारने के लिए सरकार पूरी तरीके से कारपोरेट के साथ खड़ी हो गई है कि कारपोरेट पॉलिसी बनाए और उस पे चला जाए और लोग भी उसको अपना रहे। तो सबसे पहले तो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोग अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। दूसरी बात, सरकार को चाहिए कि बाजार पर नियंत्रण करे। सरकार बाजार को अगर खुली छूट दे रखी है तो उस खुली छूट को नियंत्रण करना चाहिए। सरकार को यह चाहिए कि जमाखोरी को बंद करे, सरकार को यह चाहिए कि कालाबाजारी को बंद करे, और जो सबसे बड़ी प्रथा चल पड़ी है कमीशन प्रथा, जिसको घुसखोरी भी कहा जा सकता है, तो सरकार उसको बंद करे, क्योंकि जो बाजार में कीमत बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी लोगों को पैसे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पेट्रोलियम मंत्री को पैसे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विधायक और सांसदों को पैसे जा रहे हैं, तो इनको अगर ये कमीशन थोड़ी अगर बंद कर दिया जाए तो यह भी एक रास्ता है जिससे महंगाई को कुछ सीमा तक तो कम किया जा सकता है। और दो तीन रास्ते हैं जिससे महंगाई को कम किया जा सकता है योगेश भाई। जैसे आप देख लीजिए कि आज देश के अंदर बिना काम के आप यह बताइए कि कोरोना काल में अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो उसको मजदूरी दी जाएगी क्या? नहीं दी जाएगी। लेकिन हमारे संसद और विधायकों ने कौन से काम किए दो साल के अंदर बताए? पार्लियामेंट में कब चली है? पार्लियामेंट में कौन सी बहस हुई है बताए? कि विधानसभाओं में कौन सी बहस हुई है? भैया जब ये काम नहीं कर रहे हैं तो निकम्मे मजदूरों को पेमेंट क्यों दिया जा रहा है? और निकम्मे मजदूरों को पेमेंट देने के साथ साथ इनको हम पेंशन भी दे रहे हैं, तो क्या यह देश के आम लोगों पे मार नहीं पड़ रही है? ये भी तो देश के आम लोगों पे मार पड़ रही है। जब इनको सब कुछ फ्री में है, इनका रहना फ्री में है, इनका ट्रेवलिंग फ्री में है, इनका यातायात फ्री में है, इनकी ट्रेन की यात्रा फ्री में है, रेल की यात्रा फ्री में है, इनका उड़ने की यात्रा फ्री में, सारी बातें इनकी फ्री में है, जहां जाते हैं वहां सर्किट हाउस में इनको खाना फ्री में मिलता है, चलने के लिए डीजल और पेट्रोल इनको मिलता है, तो फिर इनको किस बात के लिए पेंशन और पेमेंट दिया जा रहा है? भैया ठीक है, पेमेंट थोड़ा बहुत दे लो, इनके काम चल चले, लेकिन ये पेंशन क्यों दिए जा रहे हैं? और दूसरी विसंगति है योगेश भाई कि अगर कोई व्यक्ति विधायक है और विधायक के बाद सांसद बन गया है तो उसको दोनों पेंशन मिल रही है, यह बताइए कौन सा तरीका है या कौन सी नीति है? तो अगर इस बात को कंट्रोल कर लेती है सरकार, और इसमें स्वतः राष्ट्रपति महोदय को आना चाहिए, इसमें स्वतः सर्वोच्च न्यायालय को आगे आना चाहिए, लेकिन आज संवैधानिक संस्थाएं भी सरकार की कठपुतली बन गई है, हमारे राष्ट्रपति महोदय इस पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो जब तक इन खर्चों को हम नहीं रोकेंगे तब तक हम महंगाई को कैसे रोक सकते? यह भी एक प्रकार का है कि अगर यह व्यवस्था किया जाता है तो महंगाई पर कुछ ना कुछ नियंत्रण किया जा सकता है, तब जाकर के महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है और महंगाई को रोकने का यह एक रास्ता हो सकता है।
ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने कोरोना महामारी में बेरोजगारी का संकट हो या बढ़ती बेतहाशा महंगाई हो, साथ ही किचन पर पड़ने वाली महंगाई का असर, साथ ही डीजल पेट्रोल और बढ़ती गैस के दाम हो, और महंगाई को लेकर सरकार किस तरीके के कदम उठाए, इस पर मोबाइल वाणी पर डॉक्टर अनूप सर ने मोबाइल वाणी पर जानकारी साझा की। डॉक्टर साहब, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार
जी। छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।